نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في قرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد جود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلي والهم الله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلي وصحابي وبارك وسلم أما بعد الله کے فضل اور کرم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی بندے کو نیک کام کی توفیق عطا فرماتے ہیں اور وہ دین کی طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے, نیک اعمال سرزد ہوتے ہیں اس سے, تو شیطان اور نفس اپنا کام شروع کرتے ہیں اور مختلف قسم کے وسوسے, خیالات, چیزیں ایسی پیدا کرتے ہیں انسان کے ذہن میں جو اس کو تنگ کرتے ہیں دین کے معاملے میں. تو اس میں سے ایک تھاٹس, ایک چیز ایسی ہے, یہ ایسا ہتھیار ہے ایک شیطان کا کہ وہ اچھے اچھوں کو جو ہے وہ تنگ کر دیتا ہے, یا تو اس ہتھیار کی وجہ سے, اس تھاٹ کی وجہ سے وہ بندہ آہستہ آہستہ دین سے دور ہو جاتا ہے. اگر دور نہ بھی ہوا تو کمزور ہو جاتا ہے, اگر کمزور نہ ہوا تو کنفیوز ضرور ہو جاتا ہے, ظاہر ہے وہ حالت پہلے نہیں رہتی ہے. ایسے ایک دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمیں سکھائی, جس میں پناہ مانگتا ہے انسان کہ اللہ تعالیٰ میں پناہ مانگتا ہوں تیرے سے کہ میں اپنی پرانی حالت میں پہلے جیسے تھا ویسے ہو جاؤں اور دنیا کے کسی فتنے کے اندر مجھے ڈال دیا جائے. بڑی معروف تو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو حالات جو ہے اس خیال اتھار سے انسان بہت تنگ آ جاتا ہے, اور یہ ایک عام ہے ہمارے یہاں جو معاملہ ہے. کیا ہے خیال ایسا جو پیدا ہوتا ہے انسان کے ذہن میں, یار میں اب دین پہ آیا ہوں, دین کا کام کر رہا ہوں, نمازیں پڑھتا ہوں, فلاں کرتا ہوں, یہ کرتا ہوں, پھر یہ کیوں میرے ساتھ ہے, پھر میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے, پھر بیماریاں مجھے کیوں لگ رہی ہیں, پھر میرے کام کیوں اٹکے ہوئے ہیں, پھر معاملات کیوں ختم ہو رہے ہیں, میرے سمجھ نہیں آتا. اور اس بات کو تقویت دینے کے لیے شیطان کا رخ موڑتا ہے اس انسان کی طرف, ان لوگوں کی طرف کہ یہاں بیچارے نماز پڑھتے ہیں, نہ اللہ کو مانتے ہیں, نہ کساب قرآن, کچھ بھی نہیں, اور وہ دیکھنے میں کہ ماشاءاللہ ترقی ہیں, جہاں ہاتھ ڈالتے ہیں سونا بن رہا ہے, خوشحال نظر آ رہے ہیں, بالکل مال دولت بھی بہت ہو رہی ہے اس کے پاس, تو بلکہ موقع پہ کبھی ہنس بھی پڑتا ہے کہ دماغ خراب ہوا اس لوگوں کا, پاگل ہو, تانے بھی پڑ جاتے ہیں کبھی. تو ہے بہت زبردست پوزیشن جی, اپنے اپنے معاملات میں انسان ہوتے ہیں بھائی, جیسے دو آدمی کسی چیز کا کام کر رہے ہیں, دکان چلا رہے ہیں, اور ایک اس حالت کے اندر, ایک اس حالت کے اندر اس کا ٹھپا ہو جا رہا ہے, اس کا دکان چلے جا رہی ہے, جب وہ دو آدمی ٹیکسی چلاتے ہیں, اس کی ٹیکسی فر فر بھاگتی ہے, اس کی ٹیکسی پینسل ہوتی رہتی ہے, اس کی ٹھکائی ہوتی رہتی ہے, بیچارے کی پریشانی رہتی ہے. کہتے ہیں جتنی نماز پڑھتے ہیں, جتنی ہم دعائیں مانگتے ہیں, پتہ نہیں یہ کیا ہوتا ہے. بس یہ ہے, بڑا خطرناک خیال ہے. یہ خیالات انسان کو یا تو دور کر دے گا آہستہ آہستہ, دور نہیں کرے گا تو کمزور تو کرے گا, یہ تھاٹس یقین کم ہو رہا ہے اس کا, یقین بنا کمزور ہو تو پھر کنفیوز تو ضرور ہو جاتا ہے آدمی کہ یار کیا کروں میں, چلو چھوڑ دیتے ہیں ہم بھی ایسے کر لیتے ہیں جیسے یہ ہیں, جیسے یہ کر رہے ہیں ہم بھی ایسے کام شروع کر دیتے ہیں, तो है बहुत खतरनाक चीज़। मसीहुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाकया बयान फरमाया इस पर, बहुत बड़े बुजुर्ग थे। वाकया बयान फरमाते हैं कि भाई अल्लाह सुब्हानहु तआला दो फरिश्तों को भेजा ड्यूटी पर, दुनिया में आते रहते ना फरिश्ते ड्यूटी पर आते, जैसे अभी भी आ रहे होंगे, ये जिक्र के जो फरिश्ते हैं इनकी भी ड्यूटी जिक्र वालों के लिए लगी है। इस तरह वो जिक्र की ड्यूटी पे आते हैं, सिर्फ अपना काम करते हैं, इधर उधर नहीं झांकते। हर फरिश्ता अपने अपने ड्यूटी पे चला जाता है, जिस ड्यूटी पे उसको दुनिया में भेजा जाता है वो अपना काम करता है। तो वो फरिश्ते जो ड्यूटी पे आए थे उसने, उसकी ड्यूटी क्या लगाई अल्लाह ताला ने कि फलां जगह चला जा, मेरा बड़ा नेक आदमी है, बड़ा अच्छा बंदा है, तो मौत इसके करीब है, मरने वाला है, इसको तमन्ना होगी मरने से पहले। उसको मौत को तो पता नहीं होता ना किसी को आदमी, हम मुझे अब क्या पता, शौक होगा, दिल चाहेगा कि मैं शहद पीऊँ, ख्वाहिश पैदा हो जाती है आदमी, और उसके पास बोतली पड़ी है शहद की नज़दीक ही है तो वो शहद पिएगा, उसको पता नहीं मर भी जाना। तूने ये काम करना है, फरिश्ते की ड्यूटी लगी कि उसके जैसे उसके शहद की तरफ हाथ बढ़ाया तुमने बोतल गिरा देनी है ताकि पी ना सके। उसने ये काम किया, कहता मैं बड़ा फरिश्ते सोच रहा है कि बेचारे इतना बरसा शख्स आदमी है, तहज्जुद पढ़ता था, जिक्र में जाता था सुबह, और जनाब माशाल्लाह शक्ल सूरत भी माशाल्लाह इंसानों वाले बनाई हुई थी, सब कुछ था मामला उसका, ये क्या चक्कर हुआ, चुप। तो वो अपने जा रहा था, दूसरा फरिश्ता भी ज़मीन से अपनी ड्यूटी पूरी करके जा रहा था, दोनों की गलैक्स लैक हो गई ऊपर चलते हैं, जैसे हमारी हो जाती वहाँ भी। तुम कहते कहते मैं तो ड्यूटी दे के आऊँ, क्या ड्यूटी, सिंपली बात होता है, तो तुम क्या करके आओ, कहते हैं मैं भी काम ऐसे ही करके आया, लेकिन रिवर्स है, बरक्स है। कैसे, कहते मुझे फला आदमी के पास भेजा गया, नहायत ही फजूल आदमी था, बेकार आदमी, ताल्लुक नहीं था दीन से उसका, और अल्लाह ताला ने कहा कि उसकी ख्वाहिश होगी, मरने वाला है, उसकी ख्वाहिश होगी कि मैं मछली खाऊं, तो उसके मैलात वगैरह सब हैं, मछली तो उसके फ्रिज में कुछ नहीं पड़ी होगी, लेकिन जो हौज उसने बनाया अपना, जिसमें गोते शोते मारता रहता है, होता है ना वहाँ पक्ष हौज शौज बना लेते नहाने के लिए, मस्ती मारने के लिए, क्योंकि बनाया तो ये काम करना कि इसको मछली तो कहीं मिलनी नहीं, इसको हौज में मछली डाला ताकि अपनी ख्वाहिश पूरी करे। तो मैं तो ये काम करके आ रहा हूँ, उसकी ये क्या बात, दोनों कन्फ्यूज करती है। तो भी अल्लाह ताला जी हमारी ड्यूटी लगाई है, चलते चलते अल्लाह ताला के हुजूर पहुँच गए, मसला देना था मैंने, या अल्लाह काम तो करें, क्या माजरा क्या करते, उधर क्या हुआ बेचारे साथ सूफी साहब के साथ, उधर उसके साथ क्या हो रहा है। उसने कहा ये बात है, अल्लाह ताला ने कहा ये राज है, अजीज़ुल हकीम हूँ मैं, अल्लाह ताला जो कुरान पढ़ता है, पढ़ता नहीं बल्कि समझता है, बल्कि समझता नहीं अमल करता है, वो कन्फ्यूज नहीं होगा इस बात से, वो मेरी सिफत को जान गया, मेरे एक एक कुरान के लफ्ज़ के अंदर समंदरों के समंदर है, जहाँ मैं अजीज़ुल हकीम कहता हूँ तो समझने वाले हैं सारी रात इसी आयत को पढ़ते रहते हैं कि अल्लाह अजीज़ भी और हकीम भी है। मैं कहता हूँ वाकई गौर करें आप, ये दो लफ्ज़ काफ़ी हैं हमें ईमान लाने के लिए, दो लफ्ज़ अजीज़ और हकीम, जहाँ अल्लाह ताला इसको इस्तेमाल करता है ना अपनी आयत के साथ, कभी वो आयत पढ़ के देखें आप कि किस जगह फिट करता है इस अपने दो सफ़ात को, खुदा की किस्म अजीब कैफियत हो जाती है इंसान की। कुरान बहुत बड़ी चीज़ दी अल्लाह पाक, रमज़ान आ रहा है, कुरान के साथ खूब शगफ और मोहब्बत लगाएं, अच्छा हाफिज़ साथ ख़ास तौर पर। तो भाई वो अल्लाह ताला का ये रास्ता, मैं अजीज़ुल हकीम हूँ, कहते पहले जो शख्स ना सूफी साहब बहुत मेहनत करते थे बेचारे, खूब काम का कभी पूरा होता ही नहीं था, वजह ये थी उसकी कि मैंने इनका मुकाम बहुत बुलंद रखा था, तूने तो रोता देखे ना शायद ये नहीं मिला उनको, हाँ मैं तुझे दिखाता हूँ सर, नज़र मारना फरिश्ते से कहा जाएगा कि जा कहाँ रहे, वहाँ पहुँच गया, देखा अल्लाह अकबर, जन्नत के वो महलात वो चीज़ें शायद है ही कुछ, ये शायद ख्वाहिश पूरी नहीं होती, नहने बहनी थी शायद किसके से महल के। मेरे भाइयों यहाँ अगर ना मिले कोई बात नहीं, अल्लाह वहाँ ज़रूर देगा, इस पर घबराने की बात है। दीन ना छोड़ो, दीन को ना छोड़ो, दुनिया के खातिर दीन को कुर्बान कभी मत करो, ये नफ्स है। नफ्स। प्रायोरिटी दो उन चीज़ों को जो हम नहीं दे सकते, लेकिन सुनी है, उससे सुनी है जो सादिक और मस्तूक था, जिसकी ज़बान पर अल्लाह ने हक को जारी फरमाया। हर पाक सच्ची और सादिक है उसकी ज़बान से निकली। कुरान जैसी सादिक चीज़ और क्या हो सकती है गवाही के लिए? क्यों हम कुरबान करते हैं अपने दीन के मामलात को छोटी छोटी बातों के ऊपर? ये टेस्ट है अल्लाह ताला की तरफ से, याद रखें। तो देख सरा कर महल को, उन्होंने देखा तो फरिश्ते के तो मुंह खुल गया, अल्लाह तो ये देख, अभी तुझे पता ही नहीं कि आगे क्या क्या इसको मिल रहा है और क्या क्या मिलेगा। देख तो शायद ही था ना, हर तमन्ना इसकी देख किस तरह पूरी हो रही। दूसरा कहते इसको मैं बदतरीन अजाब देना चाहता था, और इसी वजह से, और ये बड़ी सोच समझने वाली बात है, मैंने इसको तकलीफ ही नहीं आने दी दुनिया में, इसको बीमारी भी नहीं लाता, छींक भी नहीं मारने देता। क्यों? कि कहीं ऐसा ना हो कि इसके अजाब को में जो कोई कमी आ जाए। मैं तो रही हूँ, मैं तो रहमान हूँ, तो मैंने ऐसा बंदोबस्त किया कि कोई भी रहमत किसी चीज़ के नज़दीक ना आए तो मैं उसको वसा देता था, हाथ मारता था, दूसरी दुकान चलती थी, कोई एक चीज़ करता था तीसरी हिसाब हो जाता था। इतना मस्त कर दिया था उसको दुनिया के अंदर, आते जाते लोगों को देखते भी हंसता था, क्या लगे हैं, क्या हिसाब इनका यार, छोड़ उस चीज़ को। टांग पे टांग रख के बैठता था और ये जाम चलाता था और जनाब रात को मस्ती मारता था, फलां करता था, और जो दूसरे राल टपकाते थे वो तो फिर राल टपका के रहेंगे ना कि ये क्या हो रहा है, तो कुछ भी नहीं। तो सबक ये दिया अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ऐसे आदमी की तरफ देखो ना, बल्कि खौफ खाओ, इस्तग़फ़ार करो कि जो दौलतों में खेलता है, मालों में खेलता है, बहुत कुछ उसको मिला हुआ है और दीन से फारिग है वो शख्स, तो उससे उसकी हालत को देख के इंसान को खौफ खाना चाहिए, बजाय उस पर आदमी तरस बुक देखे और राल टपकाएगा, हाय हाय देखो यार क्या मज़े हैं इसके, क्या लुत्फ कर रहा है, कितनी देर का मज़ा होगा। ये शुगर कोटेड है, शुगर कोटेड समझते हैं ना कि दवा अंदर से कड़वी हो उस पर क्या शुगर कोट कर देते हैं, जब तक मुँह में रहती था खुश रहता है, जब आती ना कड़वी फिर पता लगता है कि अभी कितनी कड़वी चीज़ है। तो देख इसकी करवाहट, देख इस मज़ा कितनी देर है, वो सब भूल जाएगा जो मस्ती थी, वो सब मकान जायदाद सब भूल जाएगा, कि एक नमाज को तर्क करने का क्या अजाब है उसको पता लग जाएगा, सब नखरे निकल जाएंगे जी, नींद आती थी जी, फलां आता था जी, खुलता नहीं था, आँख नहीं खुलती थी, फलां नहीं होती थी, सब ढोकों से निकल जाएंगे। पैसे बनाने की मशीन को तो कभी छोटा नहीं समझता था, लेकिन अल्लाह के दीन की खातिर उसने बड़े बड़े एक्सक्यूज बनाए हुए थे, बड़े बड़े उसने चीज़ें घड़ी हुई थी अपनी तरफ से। तो कह रहे हैं चंद दिनों की बात थी, चंद घड़ी की बात थी, सुबह की फजर याद है किसी को इमाम साहब ने क्या तलावत की थी? पढ़ने वालों को भी याद नहीं होगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिसने फजर पढ़ी है सुबह के फरिश्ते तो गवाह बन गए ना आपके, वो तो पहुँच गया आसमान पे कि फलां शख्स ने फजर पढ़ी, और इस तरह जना फजर पढ़ने के बाद खड़ा हुआ, दुआएं मांगी, जिक्र किया, वो तो एक हस्ती बन गई अल्हम्दुलिल्लाह आसमानों के ऊपर, तो मुस्तरद लिखी गई ये चीज़। और जो बेवकूफ़ बिस्तरों की लोट मारते रहें, नींदें मारते रहें कि जॉब हमारा पूरा नहीं होगा, तुम्हारा फलां काम नहीं पूरा होगा, यही वो मामला था। बन किया ना दीन को हमने, किसका हुक्म आ रहा है नमाज पे ये तो सोचो, किसका हुक्म आ रहा है रोजे पर, कातरे मुतलक का हुक्म है, राजिक है वो। तो जब इस हालत में कोई चीज दे रहा है ना, इस हालत में अगर दे रहा है तो समझो बेनतहा नाराज है अल्लाह ताला से इंसान से। अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, कभी आदमी जाए भी ना उसके नजदीक, खाने भी ना खाए इस इंसान के साथ, नहीं अल्लाह नाराज है उनसे, मैं कैसे हाथ मिला लूँ। दुआ जरूर करें ऐसे इंसानों के लिए, अल्लाह इनको हिदायत दे, इनको समझ आए, ऐसे आदमी से क्या दोस्ती लगाए, समझने के बाद भी नहीं समझते। बल्कि आप वही मैंने बताया ना कि अगर दीन पे आ भी गए तो फिर उसको कन्फ्यूज़ करता है शैतान, वही मैं दूर करता है या उसको कमज़ोर करता है या कन्फ्यूज़ कर दे। तो जब ऐसे मामला आते हैं तो अल्लाह की ज़ात की तरह से सुभान अल्लाह, अल्लाह तो अज़ीज़ुल हकीम है। हिकमत क्या है इसके अंदर? हिकमत यही है कि ये जो तकालीफ दी जा रही है, सब कुछ हो रहा है, इसके बावजूद भी तो वजह यह है कि अल्लाह ताला चाहता है कि कोई चीज़ भी ऐसी ना रह जाए इसकी, कि कोई सांस भी इसका ऐसा ना रह जाए कि जिसमें इसके हिसाब लूँ, बल्कि चाहता हूँ कि बिल्कुल यहीं ख़त्म करके इसको एकदम जन्नत में ले जाऊँ। और उसके लिए फरमाते हैं कि कोई चाहता हूँ कि कोई चीज़ भी ऐसी ना हो कि जो उसके आखिरत के अंदर अजाब को कम कर दे, मुकम्मल तौर पर उसको अजाब में डालना चाहता हूँ, उसको पता भी नहीं होने देता कि इस हिसाब किताब क्या है। जिसका लीडर सबसे बड़ा था फिरौन था ना, क्या कमी थी फिरौन को मुझे बताएं? तो वजह ये कि फिरौन को तो छींक भी नहीं है ज़िंदगी में, कभी खुजली भी नहीं, इसलिए कि कहीं उससे उसका अजाब कम ना हो जाए। तो मेरे भाई ये सोचने वाली बात है बहुत ज़्यादा, इतने नाजुक मिजाज ना बने मुसलमान। एक दीनदार आदमी को इतना नाजुक मिजाज नहीं होना चाहिए कि छींक आए तो दीन उधर हो गया, छींक आए तो दीन उधर हो गया। इस्तकामत, बस अल्लाह हम तेरे हो गए, तेरे ही हो गए, सब मुस्तकाम कायम हो जाओ उसमें, हमने तुझे मान लिया है, जान लिया। अब तू जिस हाल में तू रखेगा, फकीरी में रखेगा, बीमारी में रखेगा, जिस हाल में तू रखेगा, हम तेरे साथ, हम छोड़ना नहीं तुझे। अल्लाह ताला इस इंसान को पसंद करता है, बीमारी में वो देता है, सेहत भी वो देता है, माल भी वो देता है, दौलत भी वो देता है। बस अल्लाह ने जब आपको रास्ता दे दिया, दीन का रास्ता पकड़ा दिया, ढीले अल्लाह के कर्म से हुए ना भाई, तो उसको कैसे छोड़ देंगे हम? ये कुछ चेंजेबल है? ये ट्रैक है, उसको चेंज कर दे ट्रैक को आदमी, कभी नहीं। समझो ये ट्रैक अल्लाह की तरफ से दिया हुआ है, गाड़ी दौड़ाओ इसके अंदर, भगाओ इसमें अल्लाह की तरफ, अपने आप मुस्तनद हो जाए। हिले जुले ना, कभी ये ना सोचो, वहम भी ना आए कि दीन की वजह से मेरे इस मामले में कमी आ रही है, मेरे इस दुकान में कमी आ रही है, इसमें अगर मैं जमात में नमाज छोड़ दूँ चलना पड़ूंगा तो मेरी दुकान ग्राहक खत्म हो जा रहे हैं, फलां आ रहे हैं। ये ईमान ही नहीं इंसान गए तो फिर ज़ात की तरफ कैसे हो सकता है? तो जब ये वाक़ात आए तो समझ जाओ ये क्या हो रहा है, टेस्ट हो रहा है इंसान का। जम जाएगा, नहीं नहीं ठीक है, नहीं आ रहा ना आए, भूखा रखना चाहता है भूखा रह लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, नहीं देना चाहता ना दे, लेकिन उसकी नमाज नहीं छोड़ेंगे, उसके हम उसके अहकाम को ख़त्म नहीं करेंगे, जिस चीज़ से मना करते हैं हम हटेंगे, उसमें लज्जत है, वक्ती लज्जत है, हम उसका सहारा नहीं लेंगे। तो जो इंसान और औरत मर्द इस तदीद को समझ गया, अल्हम्दुलिल्लाह समझ गया, फिर वो कामयाब हो गया, निकल गया, अल्लाह अल्लाह की तरफ पहुँच गया। इंशाल्लाह इस वसवसे से बचना चाहिए हमें, बहुत ख़तरनाक वसवसा था जो इंसान के जहन में आ जाता है, और हर उम्र के किसी हिस्से में आ सकता है, ये नहीं जरूरी कि भाई आए बुढ़ापे में आ सकता है, मौत बहुत से पहले ही वाक़ हुआ ना उसको, शायद का मरने वाले था ना वो, पता चलता है कि मरते दम तक शैतान अपने वार करता है, पूरे काम करता है शैतान। आ गया एक दफ़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास, तो बड़े बड़े माशाल्लाह नबी अजीब मुकाम है मूसा अलैहिस्सलाम, डायरेक्ट हज़रत से पूछते थे अल्लाह से बात, जनाब इस्लाम बड़ा नेक टूक बन के जनाब चादर शुक्र, तू कौन है? कभी शैतान। अच्छा तू क्या करने आया मेरे पास? आप नबी नहीं? कहते हाँ नबी हूँ। कहते कैसे नबी है आपको? मुझे तोबे दिला दें, अल्लाह ताला से देखें चक्कर देखें उसके, हम नबी थे वो तो आते तबलीग के लिए, माशाल्लाह दुनिया उसे ही करें, तो सोचा उन्होंने कि भाई बात तो अगर इसकी तोबा दिला दीजिए क्या हाल हो सकता है। अच्छा लोगों का फ़ायदा ही होगा ना, जान छूटेगी, आसान हो जाएगा लोगों को दीन। तो उन्होंने दरख्वास्त कर दी अल्लाह से कि अल्लाह ताला ये इब्लीस आया हुआ है और ये अर्ज़ कर रहा है मुझसे कि इसको तोबा दिला दे मुझे, तूने तो मुझे इसलिए भेजा है, तो तवज्जा फरमा दें इसको बेचारे तोबा दे दें। अल्लाह ताला नबी की बात को छोड़ छोड़ते हैं, कहना मूसा अलैहिस्सलाम ठीक है तू दुआ कर रहा है तेरी बात तो सही है, ठीक है हम तोबा दे देते हैं, इसलिए तोबा का तरीका हमने रखा हुआ है, वो बता दे जी क्या। कहते इससे कहो आदम अलैहिस्सलाम की कब्र पे जाके सजदा कर दे। हमने कहा बात तो ये तेरी तोबा तो कबूल हो रही है। हाँ कैसे? कहते जाके सजदा कर दे। कहते ये तो झगड़ा है सारा, अगर सजदा करना तो उधर ना कर देता, यहाँ तक नौबत ही ना आती, मुझे तोबा की जरूरत है। ऐसा है शैतान, नबी के साथ भी ट्रक मारता है। तो भाई बात यह है कि समझ जाए आप, जब दीन के किसी मामले के अंदर भी कोई चीज़ छोटी नहीं है, रुकावट बनती है इंसान के थॉट्स, ख्यालात, चीज़ें, मकान, दुकान, कारोबार, सब कुछ बीमारियाँ अपनी जगह, वाहिद उसकी ज़ात है सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाते हैं कोई परवाह नहीं है। इसके लिए इमाम के बहुत बड़ा सहारा दिया गया है, जब ऐसे हालात आए और दीन पे हो तो अल्लाह से आफियत की दुआएं मांगता रहे, कितनी चीज़ दया बनाते ना फिर दुनिया हसनत तो फिर आखिरती हसनत, आफियत दे अल्लाह ताला, दुनिया में भी आफियत दे के आराम के साथ निकल जाएँ। तो यहाँ आफियत का बड़ा अजीब मज़मून दिया है लोग अल्लाह वालों ने, कि यहाँ जो आफियत वो मांगते हैं ना, जो नेक सहला आदमी होते हैं और परेशानी की हालत होते हैं, वो आफियत कौन सी मांग रहे हैं? सुभान अल्लाह कितनी बड़ी बात है। वो आफियत कौन सी मांग रहा है? वो आफियत ये मांग रहा है कि अल्लाह ताला तेरे हर कानून को तो मैंने पसंद कर लिया, हर चीज़ अजीज़ है मुझे, आफियत ये मांग रहा हूँ कि तू इसके साथ मुझे आफियत के साथ गुजार दे। कैसे अजीब तशरीह से देख किसी आफियत के साथ, मुझे ये नहीं कि आफियत के मैं कह रहा हूँ मुझे बीमारी नहीं चाहिए सेहत दे दे फला, अल्हम्दुलिल्लाह कहता मैं मुकम्मल तेरे रज़ा पर हूँ, लेकिन आफियत मुझे चाहिए कि मुझे इन हालात के अंदर से आफियत तक पहुँचा दे। तो अल्लाह ताला हम सबको ये तौफीक अदा फरमाए कि हम रमज़ान भी आ रहे हैं माशाल्लाह, और जितने यहाँ की आखिरी मजलिस है माशाल्लाह, इसमें ख़ास तवज्जो से अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला हमें किसी ऐसे आजमाइश और फितने में ना डाल दुनिया के कि हम दीन में कमज़ोर हो जाए, टूटे मोटे जैसे भी हैं हमें पाक और साफ करके अपने दरबार में बुला लें और अज़ाबों से बचा लें।